तो महाराज जी जो शॉर्ट में कह रहे हैं कि जीव के कल्याण का साधन सत्कर्म है, तो इसी को महाराज जी ने पांच नियम के रूप में स्पेसिफाई किया है, जिसमें पूरा प्रोग्राम आ जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने मानव जन्म लेकर ईश्वर का अनुभव करना है, या यूं कहें कि ईश्वर में लीन होना है, जिसको कल्याण कहते हैं। तो उसको अपने कर्तापन और अपनी वासना से मुक्त होना पड़ता है। कर्तापन और वासना ये तो जीव का शारीरिक जीवन ही है, पूरी देह पूरा संसार वासना रूप ही है। महाजित कह रहे हैं कि ये शरीर ये संसार केवल कर्म फल द्वंद्व है और कुछ भी नहीं। पूरा पूरा संसार पूरी पूरी देह कर्म फल द्वंद्व है, और कर्म फल द्वंद्व होता है कि कोई भी फल है वो द्वंद्व रूप होता है। जैसे खुशी मिली है तो आपको गमी भी मिलेगी, सर्दी भोग रहे हो तो गर्मी भोगने को मिलेगी, जन्म मिला है तो मौत भी देखने को मिलेगी। मतलब पूरी सृष्टि जो कुछ भी आपसे कनेक्टेड है वो द्वंद्व रूप है, और ये द्वंद्व जोड़े से है, अर्थात एक चीज दूसरे का निर्माण भी कर रही है, एक चीज दूसरे को नष्ट भी कर रही है। ये ऑटो साइकिल चल रही है, हर जोड़े में ये ऑटो साइकिल चल रही है। जैसे दिन है तो रात आ रही है, रात जाते दिन आ रहा है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है आपस में इनमें द्वंद्व नहीं है, ये एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। मनुष्य की वासना क्या है कि वो इसमें से एक लाइक करता है एक डिसलाइक करता है, तो इसका मतलब इसकी पूरी की पूरी सोच ही प्रकृति के विरुद्ध है। जो व्यक्ति सांसारिक तरीके से सोच रहा है उसकी 100% सोच प्रकृति के विरुद्ध है, उस ईश्वरीय कानून के विरुद्ध है जिस कानून के अंतर्गत ये सारी सृष्टि चल रही है। तो इसीलिए मनुष्य संसार में आकर सांसारिक तरीके से बेस्ट और वर्स्ट से वर्स्ट कुछ भी क्यों ना कर ले, इसको कभी भी बेचैनी से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये बेचैन ही रहेगा, फ्रस्ट्रेट ही रहेगा। इसीलिए जिसको चैन का रास्ता बोलते हैं वो संसार से होकर जाता ही नहीं, वो करतार से होकर जाता है, और मेरे वास्ते वो करतार वो ईश्वर अंतर्यामी है। और महाराज जी जीवन सार सिद्धांत में ही जहां से स्टार्ट कर रहे हैं आप, वहां देखो जरा पहला प्रश्न क्या है, जरा पढ़िए जरा।
पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह क्यों करनी।
अब पहला ही क्वेश्चन आपको अपने जीवन को यदि समझना है तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपने वहां से स्टार्ट करिए, आप विचार करिए। पैदाइश का कारण क्या है, यानी जीव को देह क्यों मिली, तो मैं कौन हूं, थिंकिंग तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। मैं कौन हूं, मैं देह हूं या जीव हूं, देह को जीव मिला या जीव को देह मिल रही है। पैदा जीव हो रहा है या पैदा देह हो रही है, तो मुझको देह मिल रही है इसका मतलब मेरी देह ही नाश हो रही है, जब नाश हो गई तो दूसरी देह ईश्वर दे रहा है मुझे, मैं वही का वही। और मैं वही होते हुए भी संसार में अन्य मनुष्यों को ही पैदा होता देखता हूं, अन्य परिवार में ही पैदा होता देखता हूं। अभी वो पैदा हुआ है, दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर मुझे देखने को मिलता है अपने ही बच्चों में। तो जीव जिसने अभी कर्म शुरू ही नहीं किया है, ये स्वभाव में अंतर कहां से है उसके अंदर? तो यदि शास्त्र के अनुसार मैं यदि चिंतन करूं, जिसके लिए महाराज जी ने यह चैप्टर लिखा है, इससे ज्यादा सरल तरीके से शास्त्र लिखा नहीं जा सकता, सबसे सरल तरीके से ये लिखा है महाराज जी ने, पूरे जीवन का सार सार है इसके अंदर। तो जीवन किस सिद्धांत पर खड़ा हुआ है, उसका बेसिस क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये तो इसी चैप्टर में है, 13 क्वेश्चन के रूप में और 13 आंसर के रूप में। तो पहला ही क्वेश्चन आपको सोचने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि शास्त्र मनन चाहता है, रीडिंग नहीं चाहता, आप रीडिंग करते हो, वो मनन चाहता है। 13 क्वेश्चन पढ़ने में कितनी लगेगी, मुश्किल से 13 मिनट। लेकिन मैं आगे बढ़ जाता हूं, पहले प्रश्न पर ही मैंने मनन करना था कि जन्म मेरा हो रहा है या देह का हो रहा है। तो विचार करते हो तब आपका साफ साफ निर्णय आ जाता है कि जो नाश हुई है उसी का तो जन्म होगा। तो इस जन्म में भी मुझको देह मिली हुई थी, ये देह नाश होती है तो नई देह मुझको ईश्वर दे देता है, जिसको महाजी कह रहे हैं कि बीच में टाइम गैप है ही नहीं, एक देह के जाने में दूसरी देह के मिलने में टाइम गैप है ही नहीं, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक जाती है और साथ ही दूसरी मिल जाती है, बिना देह के जीव 1 सेकंड भी नहीं रहता। अब बताइए ये सिद्धांत मेरे ऊपर काम कर रहा है, तो मैं कभी नहीं सोचता संसार कोई मनुष्य देखा आपने सोचते हुए इस तरह से, लेकिन गुरु इसी तरह से सोचने को कह रहा है। जो इस तरह से नहीं सोचेगा समता व्यास कभी समझ ही नहीं आएगी, ना गीता समझ में आएगी, वो समझ ही नहीं पाएगा शास्त्र कैसे किसे, अहंकार जरूर पाल लेगा, मैं सर बहुत सुन रहा है, मैंने बहुत अर्थ जानता हूं, बड़े सुनाता भी हूं, लेकिन ABCD पता नहीं होती, इसको अपने बारे में ही विचार करने को तैयार नहीं है, दुनिया के बारे में क्या विचार करेगा वो। तो पहला ही जीवन सार सिद्धांत का प्रश्न आपको सोचने को कह रहा है, चिंतन करने को कह रहा है, मनन करने को कह रहा है, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं पढ़े जा रहा हूं। तो जीव को देह क्यों मिली, उसका रीजन बता रहे हैं, इसका मतलब जिस कारण से देह मिली है वो कारण यदि खत्म कर दो तो देह भी खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। उत्तर पढ़िए इसका,
जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई उसी वक्त देह की कैद में जीव आ गया, यानी देह स्वरूप को धारण करके अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। इस कामना का नाम ही माया है।
अब देखिए, जिसको वासना कह रहे हैं, कामना कह रहे हैं, डिजायर कह रहे हैं, निर्णय दे रहा है शास्त्र की माया भ्रम है, भ्रम है ना, डेल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है ये। तो जो मेरी मुसीबत का कारण है मैं उसको पाल रहा हूं, यहां निर्णय क्या आया कि देह जब मिली है तो देह नाश भी होगी नहीं होगी, देह जवान है तो देह बूढ़ी भी होगी नहीं होगी, देह स्वस्थ है तो देह रोगी भी होगी नहीं होगी, और ये सारी चीजें मुझको दुखी करती। मेरी देह से जितने जुड़े हुए हैं वो भी मेरे लिए दुख का कारण बनती है, क्योंकि ये सबके साथ होना है। तो इसीलिए शास्त्र आपको मजबूर कर रहा है विवेचन करने के लिए, मनन करने के लिए, ये देह सुख का कारण है या दुख का कारण है। जीव को देह का मिलना ये जीव के लिए मुसीबत है, यदि आप शास्त्र का विवेचन करोगे, मनन करोगे, तब आप इसी निर्णय पर पहुंचोगे कि जीव को देह का मिलना यह मुसीबत है। लेकिन देह मिलती इसीलिए है क्योंकि जीव के अंदर वासना है, डिजायर है। तो कामना से देह का निर्माण होता है और देह का हम सब जानते हैं कि समय सीमा है, उसकी हर चीज में लिमिटेशन है, उसने खत्म भी होना है, साथ भी छोड़ना है। इसीलिए जीव चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना कर ले, क्योंकि पूरी देह पूरा संसार ये कर्मफल द्वंद है कि समता बलास नहीं पढ़ेंगे आप, ये पूरा का पूरा संसार और देह, जो देह भी संसार का अंगी अंगी है, ये पूरा कर्मफल द्वंद है। और द्वंद का मतलब होता है कि दोनों में युद्ध हो रहा है, एक दूसरे का नाश कर रहा है। युद्ध में तो नाश ही करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे का निर्माण भी कर रहा है। लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व तो चाहिए इसके अंदर। जितने भी द्वंद हैं दुनिया में जो आप जानते हो, उसमें से एक चाहिए आपको, दूसरा नहीं चाहिए। उल्लू को अंधेरा पसंद है, इंसान को उजाला पसंद है। जीवों की लाइकिंग तो भिन्न भिन्न है। तो इसीलिए आप खुद सोच लो, जब हर दो चीज में से एक पसंद है और प्रकृति द्वंद्व रूप है, तो दो हमेशा मेरे सामने रहेंगी। तो बुद्धि लगा के तो देखो ना, सुंदर यदि मैं होशियार हूं तो बुद्धि लगा के लगाते क्यों नहीं यहां पर। जो मेरी डिजायर है वो प्रकृति में पूरी होना संभव ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। अपरेंटली ऐसा लगता है मुझे, ये तो डिजायर मेरी पूरी हो गई, ये रह गई है। इसी तरह देखता हूं चीजों को मैं, लेकिन ये नहीं देखता कि सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, ये नहीं देखता मैं। समता विलास ही करिए, सुख से ही दुख उत्पन्न होता है, सुख दुख में बदल जाता है। जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। वाणी को घना कलेश बोल रही है, मैं सुख का वेलकम कर रहा हूं, मैं सुख के लिए लालयित हो रहा हूं, बच्चों के लिए ख्वाब बना रहा हूं, देश के लिए ख्वाब बना रहा हूं, अपने लिए ख्वाब बना रहा हूं, सुख के ख्वाब। तो तेरे ख्वाब कभी पूरे होंगे? तो वाणी तो करिए, सुखिया कोई ना देखया जो आया इस संसार। वाणी तो निर्णय दे रही, मैं कंफ्यूज हूं, इसलिए सुखी आदमी देख के ईर्ष्या करता हूं उसे। सिद्धांत समझ में नहीं आता मेरी, कोई सुखी इंसान नजर भी आता उसको देख के ईर्ष्या करता हूं। यदि इस ज्ञान पे मेरी दृष्टि हो तब ईर्ष्या काहे करूंगा, मुझको पता है मानसिक रूप से तो ये क्लेश में ही है। बाहर से सुखी मुझको नजर आ रहा है लेकिन मानसिक रूप में तो क्लेश में है। इसीलिए शास्त्र का तो बड़ा स्पष्ट निर्णय है कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। दुख का मतलब है चाहे कैसी भी परिस्थिति संसार में क्यों ना जाए, तेरी मानसिक बेचैनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। किसी ने हजारों कमाए होंगे, किसी ने लाखों कमाए होंगे, किसी ने करोड़ों कमाए होंगे, लेकिन चैन नहीं। जो स्थिति प्राप्त की है उसको खो जाने का भय रहता है, रहता नहीं रहता। कोई निश्चिंत हो जाता है कि मैं ये स्थिति प्राप्त कर ली, अब ये इसमें परिवर्तन नहीं आएगा, आगे बढ़ सकता हूं, पीछे नहीं जा सकता मैं। है कोई दुनिया में इंसान ऐसा? डर रहता है कहीं बुरे दिन ना आ जाए, कहीं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति की, तू समझ नहीं रहा है इसको, इसीलिए जब कोई व्यक्ति गुरु धारण करता है तो गुरु उसको संसारी शिक्षा नहीं देता, गुरु उसको आध्यात्मिक शिक्षा देता है, उसके अपने बारे में शिक्षा देता है। तू कौन है, किसके कारण तू दुखी है, कैसे तू चैन में आ सकता है, और वो चैन संसार में नहीं है, वो अंदर है। वासना संसार में पल रही है, तेरे मन में पल रही है, विचार करके तो देख। मुझको पता है वासना मेरे मन में पल रही है, तो जहां वासना पल रही है इलाज भी तो वहीं पर है उसका। तो इसीलिए सत्पुरुष आपको सबसे पहले जन्म का कारण बताया, ये देह क्यों मिली, इसका कारण कामना है, और कामना का निर्णय दे रहा है गुरु, वाणी निर्णय दे रही है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। वहां तो स्टार्ट जीव से किया ना उन्होंने, जीव को देह क्यों मिली, और गुरु मैंने धारण किया है, और गुरु वाणी क्या कह रही है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। मैं संसार के कारण नहीं जल रहा हूं, मैं अपनी कामना के कारण जल रहा हूं, और दिन रात जल रहा हूं। अब देह मिली है मुझे, ये इंसान की देह मिली है, तो देह क्यों मिली है, तो वाणी निर्णय दे रही है, मानुष्य जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। ये मानव देह दुर्लभ वस्तु है, और किसी दुर्लभ कर्म करने के लिए मिली है, और तू मूर्खों की संगत करके, मूर्खों की निकल करके वासना फैला जा रहा है, कह रहा है मेरा बड़ा विकास हो रहा है, मेरे गृहस्थ जीवन का बड़ा विकास हो रहा है, दूसरों से कंपटीशन कर रहा है, देखो मैं कितना ऊंचा भगे। अरे मूर्ख, तू नीचे गिर गया है, तेरी वासना बढ़ी है, तूने वासना को पाला है, वासना का विकास किया है तूने, तू उल्टा चल रहा है और अहंकार कर रहा है, मैंने विकास किया है। कहां तूने गुरु धारण किया है, गुरु की कौन सी बात सीख रहा था, तो गुरु का सारा प्रोग्राम आपको अंदर ले जाने के लिए होता है, इस देह का राइट यूज करने के लिए होता है। तो मानव देह मिली है हर वर्ष वासना को कमजोर करने के लिए, और सारा संसार आपको सिखा रहा है कि वासना को स्ट्रांग करने का नाम प्रगति है, सारा संसार आपको यह सिखा रहा है। तो यह संसार के विरुद्ध ज्ञान है, तो यदि मनन ही नहीं करेगा तू, तो तेरे संसारी निर्णय बने रहे, इतना कीमती जन्म, इतना कीमती समय अपना जन्म का तू पैसा कमाने में खर्च कर दे रहा है, तो ये होश ही नहीं आ रही है। वहां जरा कमी हो जाती है, कहता है भी तपोभूमि में नहीं जा सकता था, क्यों, नुकसान हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा मेरा। तो इसका मतलब है तेरी बुद्धि अभी जागृत नहीं है, सो रही है, तू अभी इस मानव देह में सो ही रहा है। तो अब जिसने इस पहले प्रश्न पर मनन किया है, जिसने पहले पर प्रश्न मनन किया, बाद में कुछ समय नहीं आना इसको, तेरह प्रश्न पढ़ जाएगा खाली, जिसने पहले प्रश्न पर ही विचार नहीं किया वो बाकी बारह भी पढ़ जाएगा, ऐसे विचार तो पहले वचन पर करना था। इसलिए जब आप यहां आए थे मैंने क्या कहा था आपसे, जीवन सार सिद्धांत पढ़ो, मनन करना, ये वर्ड यूज किया था मैंने। अब आप विचार करके देखो, क्या हमने मनन किया, संसारी दृष्टि से मैं बड़ा बुद्धिमान, बुद्धि की दृष्टि से मैं अपने आप को बड़ा काबिल इंसान समझता हूं, क्या मैंने मनन किया, मनन तो यही है ना कि जीव को देह क्यों मिली, मनन तो इस पे करना था, मैं देह हूं या जीव हूं, तो जीव इस देह में भी है और नई देह में भी वही जीव होगा, वही मैं होगा, देह मुझको मिल रही है ना, मैं मालिक हूं। मालिक की मौत ही नहीं है, मालिक की मौत ही नहीं है, एक देह जाती है दूसरी मिल जाती है उसको, तो मैं क्या बना घूम रहा हूं संसार के अंदर। सबसे यक्ष प्रश्न तो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यह है मेरे जीवन का, पूरी दुनिया इस पर विचार करने को कहती ही नहीं है, पूरी दुनिया नहीं कहती इस पर विचार करने को, केवल गुरु कहता है। इसलिए गुरु आपका जीवन है, तो उसकी बातों को इतनी लाइटली समझता है। गुरु तेरा जीवन है, तेरी आत्मा है वो। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, वो अंदर रम रहा है, अंदर स्थित है तेरे। तो अंतर्यामी गुरु तुझसे कह रहा है, तू मेरी ओरा महाजी, इसलिए को इसको गुरुमुख जीवन कहते हैं। तू मेरी ओरा, तू मनमुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, मन में वासनाएं पल रही हैं, वासना तेरी गुरु है, उसकी पूर्ति के लिए जीवन जी रहा है। तो इसीलिए मानव देह आपको निर्वास होने के लिए मिली है, और पूरा संसार मानव देह का यूज वासना को बढ़ाने के लिए कर रहा है, इसीलिए ये मनुष्य का पतन है। चाहे वो एक व्यक्ति है, चाहे वो पूरा देश है, चाहे वो पूरा संसार है, ये पतन है। इसीलिए आप विश्व शांति संदेश पढ़कर देख लो, समता विलास में महाराज ने साफ चेतावनी दे दी है। ये जो विज्ञान का युग है ना, टेक्नोलॉजी का युग है ना, नई नई रिसर्च हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन गुरु लिखित चेतावनी दे रहा है कि नई नई प्राकृतिक रिसर्च से नए नए प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, नई नई भोग की वस्तुएं तैयार होती हैं, और उन वस्तुओं का भोग करने से मनुष्य की बुद्धि स्वार्थी होती चली जाती है, स्वार्थी होती चली जाती है, अर्थात वासना में अंधी होती चली जाती है। और जब ऐसा वक्त आता है, वो तो होना ही है, तो ऐसा जब वक्त आता है तब लोगों की बुद्धि इतनी स्वार्थी हो जाती है कि आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनने के लिए युद्ध करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, और जो सैकड़ों वर्षों में प्रगति की थी वो कुछ ही वक्त में नाश कर देते हैं। ये है प्रकृति का खेल, कर लो आंख बंद करके प्रगति। आप अपनी आंखों के आगे से ही सर्वनाश का सीन देखो, गुजरेगा आपके आंखों के आगे से। तो मैं अपने प्रियजनों को, अपने गृहस्थ के लोगों को अमीर क्यों बनाऊं? मैं विचार करके तो देखो, अमीर मैं क्यों बनाऊं? मैं रामकृष्ण परमहंस से एक प्रश्न पूछता उनका शिष्य, उनका ठाकुर जी एक चीज बताइए, क्या ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? अब देखो ऋषि का उत्तर है, यदि विद्या का परिवार हो। देखिए गुरु क्या कह रहा है, ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है यदि विद्या का परिवार हो। मैं कहूंगा शायद पीएचडी करने को विद्या कहते होंगे, एमएससी करने को विद्या कहते होंगे, एमबीए करने को विद्या कहते होंगे, डॉक्टरी पढ़ने को विद्या कहते होंगे। ना ना ना, विद्या कहते हैं आत्मविद्या को। यदि परिवार में लोग आत्मविद्या जानते हैं, ईश्वर का मार्ग तय कर रहे हैं, तो वो पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, वो पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं, नहीं तो दुरुपयोग करेंगे। दुरुपयोग क्या है? इंद्रिय भोगों में खर्च करना, ये दुरुपयोग है पैसे का। तो हमारे घरों में विद्या का परिवार है क्या? और हम कितना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं? नाम सुनने के लिए वक्त नहीं है हमको, सेवा के लिए वक्त नहीं है, सत्संग के लिए वक्त नहीं है, स्वाध्याय के लिए वक्त नहीं है, पैसा कमाने के लिए सारा वक्त है। वो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है हमारा। तो ऐसा व्यक्ति गुरु मार्ग पर कैसे चल सकता है? विचार करके तो देखो, वो चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए महाराज जी फिर प्रोग्राम दे रहे हैं, तो जो संसारी कर्म है ये सारा का सारा असत कर्म है। क्यों असत कर्म है? ये आपको असत से जोड़ रहा है, अज्ञान से जोड़ रहा है, माया से जोड़ रहा है, वासना से जोड़ रहा है। सत्कर्म कौन है, कौन सा है, जो वासना को रिड्यूस करता रहे, रिड्यूस करता रहे, आपकी बुद्धि में वो विवेक पैदा करे कि वासना मनुष्य जन्म की बर्बादी का कारण है। तो इसीलिए महाजी ने 5 पॉइंट प्रोग्राम दिया। इसका स्टार्ट है सादगी। इसका मतलब जैसे जैसे मेरा जीवन आगे बढ़ता है मेरे अंदर सिंप्लिसिटी बढ़नी चाहिए, अर्थात वस्तुओं की नीड मिनिमम होती जानी चाहिए, मिनिमम होती, ये डेवलपमेंट है, मिनिमम होती जानी चाहिए। इतनी मिनिमम हो जाए कि तुझे याद ही ना आए वस्तुओं की, भूख लगती है तो खाना खाता है, ठंडे लगती है कपड़े पहनता है, नहीं नहीं सोना है कहीं ठीक ठाक सुरक्षित प्लेस पे उसके लिए घर में रहता है, बेसिक नीड पूरी, शरीर की जो भी तो नीड है ना, नीड पूरी करने के लिए ये संसार की आवश्यकता होती है। फिर जो नीड बेस्ड लाइफ है फिर ये वासना के अंतर्गत नहीं आती, ये आप यूं कहिए मजबूरी के अंतर्गत आती है, ये मनुष्य की मजबूरी है। तो सादगी का जो टोटल मीनिंग है वो ये है, जैसे जैसे मेरे अंदर कॉन्शियसनेस बढ़े, होश बढ़े अपने जीवन के बारे में, वैसे वैसे मेरी जरूरतें कम होती चली जाए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, घर वालों को भी फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन घर में यदि मेरी चलती है तो कुछ ना कुछ मुझको एफर्ट करना चाहिए कि समझाने के लेवल पर भी, चीज़ें इकट्ठी करने के लेवल पर भी, कि क्योंकि जब मेरे हैं वो तो मुझे अपनी ज़िंदगी की फिक्र है तो उनकी भी फिक्र होनी चाहिए। तो तेरा कर्तव्य कर्म भी बनता है, जिनकी जिम्मेदारी तुझको दी गई है, इस नेचर ने जिम्मेदारी दी ना, बच्चे दिए हैं तो बच्चे का पालन करने की, पत्नी दिए तो पत्नी का पालन करने की, तो उनको भी तो होश में आकर पालन कर। लेकिन तू जबरदस्ती किसी साथ नहीं कर सकता, अपने साथ कर सकता है। तो सादगी से प्रारंभ किया मैंने। तो सादगी का मतलब क्या, सादगी का मतलब जरूरतों को कम करना नहीं है, सादगी का मतलब है जरूरतों को कम करने का मतलब है वासना को कमजोर करना। क्यों कमजोर करना, क्योंकि मैंने अंतर्यामी ईश्वर से मिलना है, ये मुझे मिलने नहीं देंगे, ये बाधक हैं, ये मन को बाहर ले जाएंगे, इनके लिए सोचना पड़ेगा, अंदर जाने की सामर्थ्य नहीं होगी मेरे अंदर। तो इसीलिए सादगी उस दृष्टिकोण से है, सादगी अपने आप में कोई चीज नहीं है। सारे जानवर सादे, कौन सा फैशन करते, क्या मुक्ति हो जाती है इनकी? तो जब मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए सादगी धारण करता हूं तो यह सत्कर्म हो गया। ये सत की ओर ले जा रहा है मुझको, तो इसलिए पांचों सत्कर्म है। सादगी भी सत्कर्म है, सत्य का पालन भी सत्कर्म है, एक ईश्वर पर विश्वास कि कारणकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए मैं सच्चाई का रास्ता क्यों छोड़ू, तो सारी सच्ची को चलाने वाला वो है तो मैं सच्चाई का रास्ता कैसे छोड़ सकता हूं। मैं तभी सच्चाई का रास्ता छोड़ता हूं जब मुझको ईश्वर पर भरोसा नहीं होता, संसार पर भरोसा होता है। मेरा ये भरोसा टूट जाता है कि ईश्वर कारण करता है सारी सृष्टि का, ये सारी सृष्टि उसके हाथ में चल रही है, इसलिए वो सत का आसरा छोड़ देता, अपनी चालाकी का रास्ता पकड़ लेता, ये चालाकी पे भरोसा है। सेवा, हर मामले में स्वार्थ की भावना है तेरे अंदर, मेरे लिए मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, तो टूटेगी कैसे, ये कर्म करने से तो बढ़िए ना ये, तो इसलिए निष्काम सेवा। किसी का बेचारा दुखी है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन किसी का कष्ट है तो मेरी जो सामर्थ्य प्रभु ने दी है उसकी मुझे कष्ट दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, सेवा हो, सत्संग, सत्पुरुषों की बातों पर गहरा मनन करना, ऐसे ऋषियों के पास बैठने का मौका मिले या ऐसे भक्तों के पास बैठने का मौका मिले उनके पास बैठना, ये सत्संग, उनसे सत्विचार सीखना, ये सत्संग, फिर सत्संग, अंदर उस प्रभु की प्रेम से, यार जो मेरा सब कुछ है, जो मेरा सर्वस्व है, संसार के जरा से सुख की तलाश करता हूं, जरा से आनंद खोजता हूं मैं, वो आनंद रूप है। तो आनंद का भंडार है, उसको छोड़े पड़ा हुआ हूं, और जो संसार मुसीबत है उसमें फंसे पड़ा हुआ हूं मैं, जानकर फंसे पड़ा हुआ हूं। इसीलिए ये पांचों नियम केवल आपको अंदर ले जाने के लिए, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। भूल के भी मत समझिए इनका कोई सामाजिक उद्देश्य है। गुरु सामाजिक नहीं होता, याद रखो, गुरु सामाजिक प्राणी नहीं है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गुरु आत्मा है और उसका संसार में आने का और आपसे मिलने का एक ही उद्देश्य है कि वो अपने आप तक तुझको ले जाना चाहता है। इसलिए रामायण में आता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान राम कह रहे हैं मेरे दर्शन का यह फल है, राम के दर्शन का या गुरु के दर्शन का क्या फल है? मम दर्शन फल परम अनुपा। अनुपा कहते हैं अनुपम, अनुपम माने अनोखा भी होता है। अनुपम उसे भी कहते हैं जिसकी उपमा संसार में मिले ही ना, जिसकी उपमा संसार में मिले ही ना, वैसी दूसरी चीज मिले ही ना, वो अनुपम होती, अनोखी होती है। तो अवतार के दर्शन का, गुरु के दर्शन का एक अनुपम फल है। जीव पाए निज सहज स्वरूप, जीव अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, ये फल है। तो गुरु धारण किया तो मैंने सारी तालीम का क्या फल है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं, ये तो फल हुआ उसका। अब आपने करनी देख लूं मैं, मेरी कहां ले जा रही है मुझे कर। यदि मैंने सेवा को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और सेवा में फंस गया तो होश कहां है मुझे, कहां होश है अपना? गुरु इसलिए बनाया था मैंने कि सेवा में फंस जाऊं, सेवा का उद्देश्य भूल गया मैं। तो संसारिक लोग यदि समाज कल्याण में भी लगा दिए जाएं तभी वहां फेल हो जाते हैं, उस चीज को ही भूल जाते हैं किस लिए कर रहा हूं मैं, उस चीज को ही भूल जाते हैं। तो गुरु का कुछ भी करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। गुरु आपसे कर्म करवाना नहीं चाहता है, याद रखिए ये, ना कभी ना सोचे गुरु हमसे कर्म करवाना चाहता है। गुरु आपसे कोई कर्म करवाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कर्म करने को इसलिए कह रहा है कि वो रास्ता है अंदर जाने का। इसलिए पूरी पूरी संगतें फेल हो जाती हैं, सत्पुरुषों की संगतें फेल हो जाती हैं, क्योंकि गुरु का पर्पज ही भूल जाती है, उनको समझ ही नहीं आती बात। इसीलिए फिर वो हर जगह जो है वो कट्टर पैदा हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि शरीर पर ही है, शारीरिक नियम ही उनके लिए सब कुछ है, असली चीज भूल गए। वो बुद्धि में उसको सही विवेचन करने की सामर्थ्य नहीं रहती। तो ये पांच नियम केवल अंदर जाने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं इनका। इसलिए किसी को दिखाने की चीज नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, अंदर जाना तो दिखाओगे किसी को। गुरु आज्ञा पालन कर रहे हो आप, तो आपको हर गुरु आज्ञा अंदर ले जा रही है, ये गुरुमुख जीवन है। और अंदर जाने का मतलब है कि हर दिन हर घंटे आप वासना से निवृत्त हो रहे हो, डिजायर से ऊपर उठ रहे हो। तो जो डिजायर आपके मन को बेचैन करती है, विचार करो यदि अंदर जाओगे तो बेचैनी आपकी कम होगी मन की, नहीं होगी? तो जीव की बेचैनी हर वर्ष कम होती है, उसको पता होता है जो राइट पाथ पर चल रहा है, उसको पता होता है मेरी बेचैनी कम हुई। कंपेयर तो कर सकता है ना, मैं तो कई बार एग्जांपल देता हूं इस बात का, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस का, कि यहां तपोभूमि में 43 ईयर्स हो गए मुझे आते हुए, और जब भी आता हूं एक महीने से कम के लिए नहीं आता यहां पर। पहली बार जब आया था तो दिल्ली में डिफेंस की सर्विस थी, और यहां जब सेमिनार करने बैठता था उस समय एक बार में एक घंटे से ज्यादा सेमिनार मुझसे नहीं हो पाता था। कोशिश तो मैंने पहली बार आके दो घंटे बैठने की भी की थी, लेकिन सिमरन जो है वो घंटे भर से ज्यादा तो हो ही नहीं पाता था। मन की हालत देखता था, मन कहाँ, दिल्ली बैठा हुआ है, बस दिल्ली याद आ रही है मन को, क्योंकि दिल्ली में क्या भोग विलास है, भोग विलास के लिए कर्म है, तो मन के अंदर सारे संस्कार वही बैठे हुए हैं। अब 43 साल बाद मन की गति देखो तो मन के अंदर कोई अट्रैक्शन ही नहीं, जो अट्रैक्शन 43 साल पहले था आज मन के अंदर वो अट्रैक्शन ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन के अंदर चंचलता खत्म हो गई, मन के अंदर संकल्प उठते हैं, संसार के संकल्प उठते हैं, लेकिन अट्रैक्शन गायब है। चेंज एक आई कि अट्रैक्शन गायब है। अब मन के अंदर दूसरा चीज उठती है कि अभी प्रभु प्रेम कैसे गहरा हो, कैसे प्रभु के हर पल याद आए, एक पल भी प्रभु ना विसरे, ये मन के अंदर संकल्प उठते। तो 43 साल में मन का कितना बड़ा जो है वो अबाउट टर्न हो गया, कितनी बड़ी चेंज आ गई इसके अंदर। तो प्रभु की इच्छा जब मन में, प्रभु की तरंग जब मन में उठेगी आपकी, उसके लिए जब मन दुखी होगा तो उसको दुख नहीं कहते हैं, अध्यात्म में उसका नाम विरह है। आप बताइए कि मन के अंदर तरंग उठ रही है, मन वही है, पहले ईश्वर की तरफ जाता ही नहीं था, संसार की तरफ लगा रहता था, एकांत में बैठ के भी शोरगुल में लगा रहे तो बात समझ में आती है, तपोभूमि में बैठ के दिल्ली की याद कर रहा है मैं। तो 43 इयर्स में सोच समझ के जब जीवन व्यतीत किया, इसी समतावलास की स्टडी करते करते भी 43 इयर्स हो गए, तो मन की गति कहाँ बदल गई। ये विकास है, ये है मनुष्य का विकास है, ये है जीव के बंधन कटना, कि हर वर्ष मन की सांसारिक आसक्ति वीक पड़ गई है, वीक पड़ गई। जबकि यदि पैसे की दृष्टि से देखूं तो उस समय तो बैंक का अकाउंट खाली ही रहता था हमेशा, यदि कहूं तो लोन ही सिर पे चढ़ा रहता था, लेकिन आज बैंक बैलेंस भी है, लेकिन मन जानता ही नहीं कि पैसे का यूज क्या होता है, कोई शौक ही नहीं मन के अंदर, सांसारिक सुख उठाना मन के अंदर शौक ही नहीं है। मैं प्रैक्टिकली देखता हूं शौक ही नहीं, तो कभी याद आती है पैसे की, बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, तो बस यही नजर रहती है कि किसकी जरूरत पड़े तो उसको पूरी कर दे, केवल एक काम के लिए मन, मैं देखता हूं पैसे की याद आती है मन को, कि भाई किसी की यदि कोई आवश्यकता है जेन्युइन तो उस पैसे का सदुपयोग कर लिया जाए, बाकी ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो मैं घोर संसारी आदमी, ये मन की गति आज मैं खुद देख रहा हूं। तो अब बताइए ये महाजी का समता विलास, महाजी का प्रोग्राम, ये किस वास्ते है? जिसने समझने की कोशिश की, चलने का प्रयास किया, देखो वही रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जो गुरु लिख रहा है। तो सारी बात का उत्तर आपका ये है कि जो गुरु के प्रति गंभीर है, उसकी शास्त्र को, उसके मार्गदर्शन को गहराई से मनन करता है, इसलिए महाजी ने कहा कि इस पर गहरा विचार करें, कई जगह ये वर्ड लिखा होगा समतावलास में, इस पर गहरा विचार करें। हम गहरे विचार को भी ऐसे पढ़ जाते हैं, खाली गहरा विचार शब्द है हमारे लिए। तो ये जीवन है, पूरे जीवन का सोल्यूशन इसके अंदर मौजूद है, ये खुद आपका गुरु है, ये लाइव गुरु है ये समतावलास, शास ऐसा नहीं होता ये। ये सीधी ईश्वर की राइटिंग है, ये आपके लिए आई है, ताकि आप ईश्वर के साथ एक हो जाओ। अंदर ही बैठे हुआ है वो, मैं भी इस देह के अंदर ही हूं। तो मन मेरा वासना सहित है, मैंने इसको वासना रहित करना है। वासना रहित मन को निर्मल मन कहते हैं। वहां रामायण करिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसा जीव जिसका मन निर्मल हो जाता है वो ये पा लेता है। पाना कहाँ है? अंदर ही। और गुरु भी अंदर ही है, क्योंकि वही तो अंतर यहां ही गुरु बन के आया है। सदगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ हुआ। इस समता व्रास रूपी आज्ञा का तूने पालन करना था, अंदर गुरु से मिलना था, ताकि तू अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, देह की तुझे जरूरत ना रहे। तो ये है गुरु का प्रोग्राम, गुरु आज्ञा जो हमें पालन करनी है, इसको सत्कर्म कहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।